नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जस्यांके शिरयाधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम धर्मम वा नहि वेद यथा पशु स कथं न्यर्पितात्मानम् कृतमहत्रम चेतनम् विब्रह्मणीयो भूतानां सगृह्णोदोक्तुमर्हति यस्य जिसके अंके गोद में सिरह सिर आधाय रख कर लोकह आम जनता स्वपिति सोती है निर्वृत शांति से स्वयं स्वयं धर्मम धार्मिक सिद्धांत या जीवन लक्ष्य अधर्मम अधार्मिक सिद्धांत वा अथवा न नहीं ही निसंदेह वेद जानते हैं यथा जिस तरह पशु पशु सह ऐसा व्यक्ति कथम कैसे न्यर्पित आत्मानम उस जीव के प्रति जिसने पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया है कृत मैत्रम श्रद्धा तथा मैत्री से समन्वित अचेतनम अविकसित चेतना वाला मूर्ख विश्रम्भणीय श्रद्धा का विषय बनने के योग्य भूतानाम जीवों का सघृण सारे लोगों के कल्याण हेतु मृदु हृदय रखने वाला दुग्धुम कष्ट देने के लिए अर्हति समर्थ है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पुरुष पशु की तरह है जो अपने स्वामी के गोद में सिर रख कर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु न हो तथा जीवों के श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। तात्पर्य, श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाले को संस्कृत में विश्वस्त घात दोतित करता है। जन समूह को सदैव इसलिए सुरक्षित अनुभव करना चाहिए क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त रहती है। अतएव कितना खेदजनक है यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई में डाल दे। हमने भारत के विभाजन के दिनों में वास्तव में देखा है कि यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे थे, किंतु राजनीतिज्ञों के छल कपट से उनके बीच सहसा घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और हिंदुओं तथा मुसलमानों ने राजनीति के कारण एक दूसरे की हत्या कर दी। यह कलयुग का लक्षण है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है, और उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि उनके मालिक उनकी रक्षा करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश जैं ही तगड़े मोटे हो जाते हैं उन्हें तुरंत वध के लिए कसाई खाने भेज दिया जाता है। विष्णु दूत जैसे वैष्णव ऐसी क्रूरता की निंदा करते हैं। दरअसल जिन नारकीय दशाओं का पहले वर्णन हो चुका है वे ऐसी यातना देने वाले पापी मनुष्यों की प्रतीक्षा करती रहती है। जो मनुष्य किसी जीव के साथ, चाहे वह जीव मनुष्य हो या पशु, विश्वासघात करता है, जिसने अच्छे भाव से उसकी शरण ले रखी है, वह अति उपापी है। क्योंकि अब ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडित रहते हैं, इसलिए पूरा मानव समाज बुरी तरह से दूषित है। इसलिए इस युग के लोगों को मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रुता, ऐसी पाप मयता के फल स्वरूप लोग निंदित होते हैं, मंद है, उनकी बुद्धि विमल नहीं रहती। सुमंद मतय वे अभागे होते हैं, मंद भाग्य, अतएव वे अनेक समस्याओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं, उपद्रुता। यह तो इस जीवन में उनकी स्थिति है और मृत्यु के बाद उन्हें नारकीय दंड दिया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोग क्रम से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। शुरू के श्लोकों को याद करेंगे तो एक सिद्धांत की स्थापना के लिए एक संवाद को उद्धृत किया गया। सुखदेव गोस्वामी पाप के प्रायश्चित के विषय में कुछ सिद्धांत स्थापित करने के लिए, सिद्धांत यह है कि भक्त्याभास से भी पाप का पूरा पूरा प्रायश्चित हो जाता है। इस सिद्धांत की स्थापना के लिए एक इतिहास को प्रस्तुत किए। इस इतिहास में मुख्य अंश है संवाद विष्णु दूत और जमदूतों का। हम लोग संवाद को सुन रहे हैं, यमराज के संवाद अपना प्रवचन पूरा कर लिए। वे जो भी बात बोले उसके कारण यही था, वे चाहते थे यह स्थापित करना कि हम लोग बिल्कुल धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं और यह पापी है, यह दंड के योग्य है। उसके दंड मतलब वो दंड देने लायक है, इस बात की स्थापना के लिए वे अजामिल के इतिहास को प्रस्तुत करती है। इतिहास ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे स्थापित हो कि बहुत अधिक दंड का पात्र है। वे उसके केवल पाप की गणना नहीं किए, पहले कहे कि बड़ा सदाचारी था, तो ऊंचाई से गिरा है तो इसलिए ज्यादा दोषी है। वे लोग पाप के जगह उसके सदाचार का उल्लेख करके यह स्थापित करना चाहते हैं कि ज्यादा दोषी है। लेकिन अब विष्णु दूतों की बारी आई तो वे केवल जमदूतों तक ही सीमित नहीं रहे, वे जमदूतों के स्वामी धर्मराज जी पर भी आक्षेप करना प्रारंभ किए। वो लोग एक डिग्री बढ़ रहे तो ये लोग कम नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है कि कोई आवेश बस ये प्रवचन नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति किसी की बात को सुना तो उसको समझने के नहीं प्रयास करता, ठीक उसके खिलाफ कुछ बोल देता है। खास करके अब झगड़ा है, स्त्रियां झगड़ा कर रही हैं तो अब यही उद्देश्य होता है कि दूसरे पक्ष को चुप करा दे। मैं एक दिन कहा था कि यह विवाद नहीं है, संवाद है। विवाद में व्यक्ति केवल दूसरे पक्ष को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन संवाद में तथ्य को स्थापित किया जाता है। वो विष्णु दूतों का परिचय दे रहे हैं कि नयको विदा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वे लोग न्याय के पंडित थे। न्याय कहते हैं जो सिद्धांत स्थापन की विद्या है वह न्याय है। न्याय एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा का। व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, उत्पत्ति, इस समय न्याय के जगह पर सीधा आप लॉजिक कह सकते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है तो एक पेपर लॉजिक होता है, तो न्याय मतलब लॉजिक। विष्णु दूतों का परिचय दे रहे हैं नए कोविदा। वे सिद्धांत के स्थापना में बहुत दक्ष व्यक्ति थे। जमराज के दूत जो भी बोले तो कह रहे हैं कि एवं ते भगवत दूता जमदूता विभास उदम उपधार्य, उसको सुने, ध्यान से उस पर विचार किए और इसके बाद तान प्रति आहु उनसे बोलने लगे। ये ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी अपने मन में कुछ विचार है, वो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसे मतलब नहीं, जो अवसर आया व्यक्ति अपना बात बोलने लगता है। लेकिन भगवान के दूतों के विषय में कह रहे हैं उपधार्य, उसको अच्छा से सुने, तात्पर्य पूर्वक उस पर विचार किए और विचार करके और इसके बाद बोलना प्रारंभ किए। तो ये बोल रहे हैं कि अहो कष्टम, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल है, अब ये दूसरी धारा में चल दिए। वे लोग कह रहे हैं कि ये पापी है, इसको दंड देना चाहिए। तो ये लोग अब अजामिल की बात तो छोड़ दिए, अभी उस पर नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे। नहीं कि अहो कष्टम, बहुत कष्ट की बात है। वे क्या कष्ट है, क्या दुख है कि धर्म दृशाम अधर्व स्पृशते सभा। जो धर्म दृक है मतलब धर्म के विषय में जिनको विवेक है और वैसे व्यक्ति के सभा में, वैसे व्यक्ति के ऑफिस में अधर्म कब्जा कर रहा है, यह बहुत कष्ट की बात। कोई अधार्मिक व्यक्ति है या मूर्ख व्यक्ति है और वहां कुछ गलती हो जाए तो उतना शोक की बात नहीं है, लेकिन जो जानता है धर्म अधर्म, व्युत्पन्न मति है, उसको विवेक है और उसके यहाँ गलती हो रहा है, ये बहुत भारी कष्ट की बात है। वो कह सकते हैं कि अरे ऐसे क्यों कह रहा है, तो कह रहे हैं कि और दंडे स्व पापे सुदंडो ध्रियते वृथा। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जो दंड देने लायक नहीं है, जो पापी नहीं है, उसको झूठ मूठ का दंड दिया जा रहा है। ये बहुत कष्ट की बात है। और इस कष्ट के बात की स्थापना कर रहे हैं कई एक श्लोक में। एक तो वे ये कह रहे हैं कि ऐसे गलती एक व्यक्ति करेगा और खास करके बड़ा व्यक्ति है तो पीछे वाले ऐसा गलती करना प्रारंभ कर देंगे, तो ये तो गलती की एक परंपरा चल जाएगी। जो कह रहे हैं कि हम लोगों को समाज के लिए बहुत कष्ट हो रहा है, ये तो बहुत भारी अनर्थ होने जा रहा है, क्योंकि जो कष्ट जो दंड देने लायक नहीं है और उसको दंड दिया जा रहा है, तो ये बहुत भारी दुख की बात है। इस बात को समझा रहे हैं कि देखिए कितना कष्टकारी बात है। मान लीजिए कि कोई दस्यु का समुदाय है, वे लोग घात लगा करके किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं, आंख निकाल लेते हैं, हत्या भी कर देते हैं, क्या क्या करते हैं, इससे भी दुख होता है। लेकिन अब थोड़ा कल्पना कीजिए, देखने को तो शायद ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई माँ है और उसके गोद में अपना सिर रह करके कोई बच्चा निश्चिंत सो रहा है और कोई माँ उस बच्चे की आंख निकाल ले, गला काट दे, तो मैंने अब कितना नरक हो जाएगा, ये क्या स्थिति हो जाएगी। तो भगवान के दूत स्थापित कर रहे हैं कि यही होने जा रहा है, आप लोगों का जो व्यवहार है इतना भारी अनर्थ होने जा रहा है, इसी से हम लोगों को बहुत कष्ट अनुभव हो रहा है। अरे प्रजानन पितरो ये च शास्तार साधव समा यदि स्यात् तेस वैषम्यम कम यांतिम शरणम प्रजा। अरे ऐसे ही समाज में बदमाश लोग हैं, अवांछित तत्व हैं, उनके भय से व्यक्ति माता पिता के शरण में जाता है, रक्षक के शरण में जाता है, और वही गलती ये लोग भी करने लगे तो फिर अब समाज की क्या गति होगी, कहाँ व्यक्ति शरण लेगा। इस बात को कह रहे हैं प्रजानम पितरो ये च, जो समाज के लोक के पिता के समान है। पिता कहने का अर्थ है कि वे उसके शुभचिंतक हैं। कह रहे हैं कि पितृवत वात्सल्य न पालका, माता पिता के हृदय में वात्सल्य होता है। ये वात्सल्य का क्या मतलब है, गाय के हृदय में अपने बछड़े के प्रति जो भावना होती है उसी को वात्सल्य कहते हैं। तो स्नेह माता पिता के हृदय में है, तो जैसे माता पिता के हृदय में स्नेह है बच्चे के प्रति, वैसा ही स्नेह है राजा का, ये जो किसी पद पर है, अपने प्रजा के प्रति, अपने अधीनस्थ के प्रति होना चाहिए। तो कह रहे पितर और शास्तार, शास्ता का अर्थ है कि जो गुरु हैं, उपदेश दे करके किसी का हित करना चाहते हैं, साधव खुद सक्रिय हो करके और किसी का हित चाहते हैं, समा, समा का अर्थ है कि जो दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझते हैं, यदि स्याते सुवैषम्यम कम यांतिम शरणम प्रजा, और वे लोग ही विपरीत व्यवहार करने लगे तो प्रजा कहाँ जाएगी। तो हम लोगों को बहुत कष्ट है, करें कि ऐसा यदि समाज के प्रधान लोग करेंगे तो पूरे समाज में यही परंपरा चल जाएगी, बहुत भारी दुर्दशा हो जाएगी। तो यह तो एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष यह है कि विश्वासघात की प्रवृत्ति बन जाएगी, और विश्वासघात बहुत भारी पाप है। हम लोगों के यहाँ गाँव में यह स्थापित है कि विश्वासघाती के मांस को सियार भी नहीं खाते हैं, उस उसका स्तर इतना नीचे माना जाता है कि लोग कहते हैं अरे तू विश्वासघाती के मांस तो सियार भी नहीं खाएगा। भगवान के दूत कह रहे हैं कि विश्वासघात की प्रवृत्ति समाज में फैल जाएगी। वे कैसे विश्वासघात की प्रवृत्ति फैलेगी तो कह रहे हैं कि जस्यांके सिर आधाय लोक स्वपति निर्वृत स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु। इस समाज पर विचार कर रहे हैं कि समाज की स्थिति क्या है। समाज में अधिकांश लोग हैं कि बहुत विवेचन नहीं करते हैं, उनको हित अहित का बहुत ज्ञान नहीं है, किसी पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कोई लीडर है तो उसके पीछे चल रहे। एक उदाहरण से इस बात को समझिए, एक कोई रेलवे पर यात्रा कर रहा है, आरक्षण ले रहा है, तो क्या खतरा हो सकता है, कैसे सुरक्षा होगी, कैसे रेल चलाना चाहिए, ये सब विचार नहीं करता। रेलवे विभाग पर ड्राइवर पर उसको विश्वास है, टिकट खरीद लेता है, सो जाता है। तो जस्यांके सिर आधाय लोक स्वपति निर्वृत, हम लोग आरक्षण कराते हैं और एकदम बेड लगा करके सो जाते हैं, कभी कभी सोने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे ब्रेक लगाया जाता है, कैसे कोई खतरा है तो निवारण किया जाएगा, कुछ तो ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं कि स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु। उदाहरण दे रहे हैं भगवान के दूत कि जैसे पशु हैं, कोई पालतू पशु हैं, स्वामी उसको घास खिलाता है, उसको स्नान कराता है, वो विश्वास करता है, उस व्यक्ति के नजदीक वे आ जाता है। जिस पशु से आप स्नेह कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, तो आप जाइए तो वे भी नजदीक आ जाते हैं। किसी गाय को आप खिला रहे हैं तो गाय आकर के सहलाने के लिए खड़ी हो जाती है, और स्वामी आगे बढ़ता है तो पीछे पीछे वो भी चली जाती है। उसको पता नहीं है कि हमारा पालन करेगा कि हत्या करेगा, पूरा विश्वास कर रहा। तो कसाई उस पशु को ले जाकर के बौद्ध स्थान पर पहुंचा देते हैं तो एक बात है, लेकिन जिसकी स्थापना हो कि बहुत सदाचारी है, इसके हृदय में बहुत करुणा है, और वह व्यक्ति ऐसा काम करने लगे तो इसको विश्वासघात कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कि सकथम नर्पितात्मानम कृतमैत्रम अचेतनम विश्रम भड़ियो भूतानम सगृहो दग्धुमर्हति। कह रहे हैं कि कृतमैत्रम अचेतनम, कोई कोई व्यक्ति है कि विश्वास पूरा किया है, अचेतनम उसको ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है लेकिन विश्वास किया है। क्यों विश्वास कर लिया कि विश्रम भड़ियो, क्योंकि उसका पद ऐसा है, ऐसी स्थापना है कि लोग विश्वास करते हैं। भाई क्यों विश्वास करते हैं, सघृण उसका ऐसा व्यवहार है कि वो बहुत स्नेह प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और ऐसा व्यवहार कर रहा, ऐसा भाव प्रकट कर रहा है तो मानो उसका हृदय ही द्रवित हो रहा है उसके सुख दुख से, तो व्यक्ति क्यों नहीं विश्वास कर जाएगा। तो अब विश्वास करके और अपने को पूरा पूरा समर्पित कर दिया है तो उस व्यक्ति को कैसे दंड दिया जा सकता है। और यदि कोई उस व्यक्ति को दंड दे रहा है, खास करके उसके हत्या कर रहा है, तो ये तो बहुत भारी पाप है ना। और यदि यही प्रवृत्ति देखा देखी बड़े लोगों के समाज में फैल गई तो कितना भारी अनर्थ होगा। तो दो दृष्टि से अनर्थ की संभावना कर रहे हैं कि एक तो विपरीत व्यवहार किया जा रहा है, जो दंड देने लायक नहीं है उसको दंड दिया जा रहा है, और दूसरी चीज कि जिसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है और वो किसी व्यक्ति पर विश्वास किया है कि वे धर्म ही करेंगे और वही व्यक्ति गलती करने लगे तो विश्वासघात की प्रवृत्ति समाज में फैल जाएगी। तो दो कारण से समाज की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, इसीलिए हमको बहुत कष्ट है। तो सीधा आक्षेप धर्मराज जी पर है कि धर्मराज हैं, एक बड़े पद पर हैं और ये स्थापित बात है कि वे पापियों को दंड देते हैं, तो उनके व्यवहार में यह विपरीत स्थिति देखी जा रही है, बहुत भारी गलती का प्रवर्तन करने जा रहे हैं। अब यह बात सुन करके वो जमराज जी के दूत बड़ा कौतुक दिखाई कि कैसे कह रहे हैं, तो आगे इस बात को भगवान के दूत स्थापित किए हैं कि अरे जिम ही ये नारायण शब्द बोला तो ये तो सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया, ये तो अब दंड देने लायक नहीं रहा गया और ऐसे व्यक्ति को नरक में ले जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए अपने दूत को भेजा गया, ये तो बहुत भारी अनर्थ है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे अनर्थ है, जमराज जी पर कैसे आक्षेप कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तथा चैते जमादयोपि श्रेष्ठत्वेन अभिमता सर्वे विश्वसनीय। ये जो जमराज जी का पद है तो स्थापित धर्मराज धर्म के अनुसार ये चलेंगे और स एव और दंड ने प्रवीरता, वही व्यक्ति जो दंड देने लायक नहीं है उसको दंड देने में प्रवृत्त हो गया और तदनुसारेण सर्वोपि लोकस्त तथा प्रवृत्तो भविष्यति। अरे कह रहे हैं कि अब ऐसा करेंगे तो सारे लोग ही ऐसा करने लगेगा, ये बहुत बुरा हो जाएगा। ओ जमराज जी को तो साधु हैं, महाजन हैं और उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि साधु मतलब जो दूसरे का हित करे और वही व्यक्ति अपना दूत भेज करके और पापी व्यक्ति को नरक में ला रहे हैं, ये कैसी साधुता है। और सम होना चाहिए, अपने दुख सुख के समान सारे व्यक्ति के दुख सुख को समझना चाहिए, लेकिन जो पापी नहीं है उसको नरक में डाला जा रहा है तो बहुत भारी अनर्थ हो रहा है। तो इस प्रकार अपने प्रवचन के प्रारंभ में भगवान के दूत यही स्थापित कर रहे हैं कि आप लोग धर्म का सिद्धांत तो बोल दिए लेकिन इसका अप्लीकेशन नहीं हो रहा है। धर्म दृशाम उनके प्रवचन को सुन करके भगवान के दूतों को भी लग रहा है कि लोग धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन धर्म के सिद्धांत जानने वाले व्यक्ति की सभा में अधर्म हो ये बहुत कष्टकारी है। और इस प्रकार इन श्लोकों में वे अपने कष्ट को व्यक्त कर रहे हैं कि समाज के लिए बहुत बुरा होगा। माता पिता ही अपने बच्चे की हत्या करने लगे तो कितना बुरा हो जाएगा। तो ऐसे ही घातक स्थिति वे बतला रहे हैं कि अजामिल को जो नरक में ले जा रहे हैं तो वैसे बुरा है जैसे माता पिता अपने निर्दोष बच्चे को दंड देने लगे। और इस बात की स्थापना वे बहुत सुंदर ढंग से किए हैं। कई एक प्रश्न उठ सकता है कि कैसे बात कह सकते हैं, वे कहे हैं कि क्योंकि ये नारायण का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, वो कह सकते हैं भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने पुत्र का नाम लिया है। वो सिद्धांत दिए हैं कि कैसे भी नाम लेने से उसका फल आ जाता है। कोई कोई चीज होता है कि उसमें भाव की अपेक्षा नहीं होती है, कोई कोई चीज है कि उसमें भाव की अपेक्षा है, जैसे किसी को दान दे रहे हैं तो दान का कितना फल होगा, केवल वस्तु देने से फल नहीं मिल जाएगा, वो भाव का भी अपेक्षा रखता है, किस भाव से दे रहे हैं उसके अनुसार फल मिलेगा। लेकिन कहीं आग फेंक दीजिए तब वहाँ ये बच्चा फेंक रहा है, सयाना फेंक रहा है, या खूब बर्फ उत्पन्न करने की भावना से फेंक रहा है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। आग फेंक दिए सूखे घास पर तो जलेगा ही, आपके भावना का कोई महत्व नहीं है। तो उसी तरह भगवान के नाम में खास करके पाप खत्म करने के लिए भाव की अपेक्षा नहीं है, दूसरे उपलब्धि के लिए भाव का भी महत्व है, लेकिन पाप खत्म करने के लिए भाव की अपेक्षा नहीं। कथम अपि सकृदातम प्राणिना मुक्तिदम, या किसी तरह मतलब श्रद्धा से अश्रद्धा से, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, या कथम अपि का एक अर्थ है कि कैसे भी जिह्वा से, कान से, स्पर्श से, आंख से एक बार भगवान के नाम का संपर्क हो गया तो मुक्तिदा प्राणी नाम, यद किसी भी प्राणी को ये मुक्ति प्रदान करने वाला। तो इन सब बातों की स्थापना भगवान के दूत आगे के श्लोकों में किए हैं, इन श्लोकों में अपना कष्ट प्रकट कर रहे हैं कि यह जो व्यवहार किया जा रहा है इससे समाज में बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, कहाँ वे आश्रय लें ये कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। हरे कृष्णा। प्रश्न है, हाँ सघृण, ठीक ठीक, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत है, आपकी समस्या नहीं है, लेकिन तो संस्कृत का शब्द आपके अनुसार नहीं चलेगा ना, आपको उसके अनुसार चलना होगा ना। एक ही शब्द का अर्थ दूसरे भाषा में अलग अलग होता है, केवल संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में घृणा का अर्थ नफरत भी होता है, प्रेम भी होता है, दोनों अर्थ है। तो यहाँ प्रेम के अर्थ में लिया गया, स्नेह के अर्थ में सघृणा। कई एक जगह ऐसा होता है कि एक ही शब्द का कई एक अर्थ होता है, जैसे पानी, पानी शब्द है तो इसके कई एक अर्थ होते हैं। पानी को कुछ लोग मैंने जीवन ही मानते हैं, तुम्हारा पानी खराब कर देंगे। पानी मतलब इज्जत भी होता है, पानी मतलब सौंदर्य भी होता है, उसका पानी बहुत अच्छा है, मतलब कांति बहुत अच्छा है, अरे तोरे एक पानी बाकी ना रह जाए। तो पानी मतलब बेइज्जती भी होता है। तो उसी तरह ये घृणा शब्द है तो ये नफरत के अर्थ में भी होता है और स्नेह के अर्थ में भी होता है, तो यहाँ स्नेह के अर्थ में लिया गया। और कोई प्रश्न? आए और थोड़ा आगे आकर के पूछिए, या माइक, हाँ माइक दे दीजिए, ठीक।
धरती पर अगर हम अग्रसर होते हैं तो बाधाएं हमारा पीछा करती हैं, लेकिन वो
ठीक है। हम आपसे प्रश्न करेंगे, क्या भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो अपने संस्कारों को त्याग करके भक्ति में आ रहे हैं कि ले करके आ रहे हैं? जब सारे संस्कार का त्याग करके भक्ति में प्रवृत्त हो जाएंगे तो बाधाएं आपके पीछा नहीं करेंगे, वे दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी संस्कार आपका है तो भक्ति में बाधाएं भी आएंगे, लेकिन भक्ति की शक्ति है कि बाधा को दूर करते जाती है। भक्ति करने पर कई एक तरह के बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं का वर्गीकरण किया गया है चार भाग में। सुकृत जन्य बाधा, अनर्थ बाधा कोई अनर्थ कहते हैं, जो अच्छा कार्य किए हैं तो उसका भी फल बाधा के रूप में उपस्थित हो जाता है। कोई बहुत समाज का सेवा करने वाला है और उधर से अब यहाँ आ गया कि वृंदावन में निश्चिंत भजन करेंगे, वो कितना हो चाहे कुछ कुछ लोग पैरवी के लिए तो सहायता के लिए पहुंच जाएंगे, वो फोन करेंगे, मेल लिखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो अच्छा कार्य किया है। तो एक सुकृत करने से बाधा होता है, एक दुष्कृत जन्य अनर्थ, बहुत बुरा कार्य किए हैं तो उसका भी कुछ संस्कार आता है, वो भी प्रभावित कर देता है। और भक्तिउत्थ अनर्थ, भक्ति करते हैं तो उससे भी कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है। भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, खूब अच्छा से भक्ति कर रहे हैं तो धनी धनी लोग आकर के आपके पीछे लग जाएंगे, स्त्रियां सेवा करने के लिए पीछे लग जाएंगे। ये भक्ति के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। और एक होता है अपराध से उत् अनर्थ। अब किसी भक्त का अपराध कर दिए, नाम का अपराध कर दिए, तो आपका मन, वो दूसरा नहीं कुछ करेगा, आपका मन के प्रवृत्ति ही भजन के विरुद्ध हो जाएगी। तो भजन करने पर बाधाएं आती हैं, चार तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन तीन तरह की जो बाधा है तो भक्ति के प्रभाव से बहुत आसानी से वो दूर हो जाता है। किसी दुष्कृत का, बुरे कर्म का फल है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, सुकृत का फल है वो भी खत्म हो जाएगा, और भक्ति करने से जो कुछ बाधाएं आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएगा। कठिन होता है अपराध से उत्पन्न जो बाधाएं हैं वो, लेकिन वह भी अविरत भक्ति में लगे रहेंगे दैन्य पूर्वक तो अभी समाप्त हो जाता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं यही दूंगा कि भक्ति करने में बाधाएं आती हैं, लेकिन भक्ति करने से बाधाएं दूर भी होती जाती हैं, इसलिए कोई निराशा का अवकाश नहीं है। हाँ ठीक ठीक, उनको माइक दे दीजिए। ठीक है। यमराज भगवान नहीं है ना, हाँ तो कोई भी जीव है तो उससे गलती कभी कभी हो जाती है, तो एक्चुअली वो यमराज जी की भूल थी, वो क्लर्कियल लेवल पर हो गया, जो उसके पाप का लिस्ट था तो उसको डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन वो रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ था। तो अंततः ये यमराज जी के ऑफिस से ही भूल हुई थी, भूल के कारण वो जो रिकॉर्ड था उस पर कुछ लिखना चाहिए ना कि इन वैलिड या कुछ, ऑफिस के कुछ गलती हुई थी। जीव से गलती हो जाती है बड़े बड़े पद पर जाने पर भी। महाभागवत है लेकिन महाभागवतों के लिस्ट भी देखेंगे तो कुछ कुछ गलती कहीं कहीं निकल जाती है, कई एक लोगों की गलती निकल जाती है, ये यमराज जी की भूल थी। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।